لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 21 رمضان 1441 ہجری، مولا متقیان کی شہادت کی رات آ گئی ہے، لیکن مولا کی شہادت کی یہ رات باقی معصومین کی شہادت کی رات سے ان معنوں میں ذرا مختلف ہے کہ باقی معصومین کی شہادت رات کے اختتام پر دن شروع ہونے کے بعد ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو دن ہوتا تھا تو اس میں پھر امام کو غسل و کفن دے کے دفن کیا جاتا تھا. لیکن مولا متقیان کی شہادت کی رات یہ ہے کہ آج ہی رات کو مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے، آج ہی رات کو مولا کو غسل و کفن دیا گیا، اور آج ہی مولا کو اس طرح سے دفن کیا گیا کہ ابھی کوفے میں فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں کہ حسنین اور جو ان کے ساتھ چند خاندان والے تھے وہ مولا کو نجف میں دفن کر کے واپس کوفے میں داخل ہو رہے تھے. فجر سے پہلے پہلے ہی مولا کی شہادت بھی ہو گئی اور مولا کا دفن بھی ہو گیا، تو چند گھنٹے ہیں. اور مولا متقیان کی شہادت بھی قیامت سے کم نہیں، چنانچہ یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ مسلسل 40 دن مولا کی شہادت کے بعد مسلسل 40 دن زمین سے جس پتھر کو ہٹایا جاتا ہے تو تازہ خون جوش کھا رہا. اور اس کے علاوہ مختلف پرندوں، مختلف نباتات اور مختلف علاقوں کی زمین کے ذریعے سے مولا کی شہادت کی خبر پوری دنیا تک پہنچ گئی. کئی روایتیں ایسی کہ ادھر کوفے میں مولا کی شہادت ہوئی، ادھر مدینہ منورہ میں خبر ملی. آج کے ایک بچے کے لیے میرا یہ جملہ ذرا عجیب جملہ بن جائے گا، کیونکہ وہ تو عادی ہے اس ماحول کا کہ جہاں پہ اس وقت کی خبر ودن سیکنڈ ساری دنیا میں پہنچ سکتی 1400 سال پہ. اور جب مدینے والوں سے پوچھا گیا کہ تمہیں اتنے جلدی کیسے پتا چل گیا، تو کہا کہ ہمارے ہاں زمین خون جوش مارتا ہوا خون زمین سے نکلنے لگا، درخت کے پتوں سے خون بہنے لگا. تو آج کی رات واقعا ساری کائنات ایک قیامت کی کیفیت میں، اور خاص طور پر عالم اسلام کی تو عجیب حالت. آج کوئی جا کے پورے عالم اسلام کے یتیم بچوں سے پوچھے ان کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی. آج وہ بےکس صاحبان ایمان، بےکس وہ مظلوم، وہ مستضعفین جن کی مولا تمام زندگی مدد کرتے رہے، ان کے لیے کیسی یہ رات. لیکن اس رات کے مصائب کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا مولا کی سیرت کے حوالے سے کچھ اختتامی باتیں. اور اگرچہ مجلس کے اختتام پر یا شاید مجلس کے بعد یہ اعلان میں پھر کروں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پر کہ کل کا دن 21 رمضان کا دن، چنانچہ کل بھی یہاں پہ ایک مجلس ہے العصر میں، اور وہ دوپہر کے وقت ہے، سہ پہر کے وقت ہے، تقریباً 4 بجے کے قریب. مولا متقیان کی شہادت کی یہ مجالس مجھے پڑھنے کا موقع جو مل رہا، تو ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں. کل کے مجلس کے بعد بھی کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے یہ تو ایک سکون اور ایک اطمینان ہے کہ مجلس مجلسی ماحول میں پڑھ رہا ہوں، الاثر سوسائٹی آسٹریلیا کے امام بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں. باقاعدہ اسی انداز سے دائیں بائیں میرے تبرکات اور معصومین کے روزوں کی شبی. لیکن یہ مجلسے میں مجبوری میں پڑھ رہا ہوں. اگر یہ کورونا का मसाला ना होता तो ये मजालिस मुझे नहीं पढ़ना था, ये किसी और की जिम्मेदारी थी, लेकिन चूंकि वो मजबूरी में यहां ना आ सके इसलिए अलासर के इंतजामिया ने भी मजबूरी में मुझसे राबिता कायम किया और मैंने भी मजबूरन इस दावत को कबूल कर लिया कि मुझे एक सवाब तो मिल रहा, लेकिन मजबूरन इसलिए कि मैं खुद जानता हूं कि अब माह मुबारक के रमजान में मैं साहिबान ईमान की वैसी खिदमत नहीं कर सकता हूं। जो कल के मजलिस के बाद लोगों ने कहा बहुत ही ज्यादा मुझसे थोड़े बेतकल्लुफ है कि मौलाना आपने टाइम बर्बाद कर दिया, हमारी इकरात आपने जाय कर दी, बहुत ज्यादा हमारे पास च्वाइस थी तो हम आपकी तरफ आ गए, पहले से मालूम होता कि ऐसी गुफ्तगू होगी तो एक बटन ही के क्लिक पे तो था हम कहीं और चले जाते। मुझे खुद भी इस बात का अंदाजा था, मैंने असर की इंतजामिया से गुजारिश भी की थी और खुद भी ये कोशिश की थी कि इस वक्त के ऑस्ट्रेलिया के हालात में जहां बाहर से कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकता, कि अगर कोई आलिम और अच्छा खतीब मिल जाए तो ये मजालिस उनके सुपुर्द कर दी जाए, लेकिन अब यह है कि एक ही टाइम माह मुबारक के रमजान में रोजे के इफ्तार के बाद एक ही ये टाइम होता, चुनाचे यहां के तमाम उलमा मशगूल थे। मजबूरन मैंने जिम्मेदारी कबूल की। अब ये बार बार मैं लफ्ज मजबूर क्यों कह रहा हूं, कल रात की मजलिस से रब्त मिला के मौला की सीरत के एक पहलू को अभी आपके सामने जाहिर करना, और वह रब्त ये कोरोना के हवाले से माह मुबारक रमजान से पहले ही मराज कराम के मुख्तलिफ फतवे इस हवाले से आने लगे कि बहुत सारे नए नए मसले खड़े हो गए थे, खासतौर पर मरने वालों के गुस्लो कफन और दफन के हवाले से कुछ ऐसा एक खौफ पैदा हो गया था कि जिस तरह से किसी अछूत को छूता हुआ हिंदू ब्राह्मण कांपता तैयारी नहीं होता, उस तरह से मैयतों को हाथ लगाते हुए लोग घबरा रहे थे, जिसमें से काफी चीजें तो शरण थी। तो अब मसाला यह था कि एक तरफ वाजिब किफाई में शामिल है, दूसरी जानिब इतना बड़ा खतरा था कि उस गुस्लो कफन के नतीजे में यह जिंदा आदमी ना मर जाए। फतवे आने शुरू हुए मुसलसल, तमाम मराजे से राबिता किया गया, उन्होंने फतवे दिए। फिर जो हेल्थ केयर के प्रोफेशन से रिलेटेड मर्द थे उनकी दाढ़ियां शेव करने का मसाला आया, तो मास्क का इस्तेमाल कम अज कम उनके लिए तो लाजिम है। और एक ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क है कि जहां पे आम आदमी को मास्क पहनने से डिस्करेज किया जा रहा है, बाकी तो दुनिया के कानून में लाजिम कर दिया गया, लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है तो मास्क लाजिम है, और मास्क लाजिम है तो दाढ़ी एक प्रॉब्लम बनती है मास्क के अंदर, दाढ़ी शेव करने का मसला आया और भी कई मसले। फिर जैसे ही रमजान शुरू होने वाला था रोजों का मसला आया और फौरन हमारे मराजे कराम की तरफ से इन तमाम मसाइल के हल आते रहे। लेकिन कल रात की जो मजलिस थी ना, ये मैं उससे रब्त मिला रहा हूं, लेकिन हुआ यह है कि फतवा जब आ जाता है उसको समझना, गर्चे बहुत ही आसान जबान में हमारे मराजे ने फतवे दिए थे, फिर उसको समझना उसके लिए भी जरा सी मालूमात आदमी के पास होनी चाहिए, और एक आम आदमी के पास नहीं होती है। तो इसलिए मर्जे का फतवा आने के बाद फिर मकामी आलिमों को उसकी वजाहत करना पड़ती। अब ये गुस्ले मैयत के हवाले से जो फतवे आए थे जिसका खुलासा ये बन रहा था कि मैयत को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, गुस्ल मत दो, तैमुम में भी अगर डर लग रहा है तैमुम भी मत करो, हुनूत भी मत करो, बस दस्ताने पहन के कफन दूर दूर से पहना के उसको दफन कर दो, तो वो इसलिए कि एक माहौल ऐसा बन रहा था, लेकिन उससे लोगों ने गलत मतलब निकाला। चुनाचे दुनिया के वो इलाके जहां पे मोमिनीन की कसरत से मौतें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया महफूज रहा और कोरोना डिजीज की वजह से किसी भी امام باڑے کو یا غسل خانے کو اس مسئلے پہ فی الحال عمل کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن امریکہ میں یا انگلینڈ میں جہاں پہ 30,000 اور 50,000 اور 80,000 موتیں ہوئی ہیں وہاں مومنین کرام کی بھی خاصی تعداد تھی. تو اب یہ فتووں کو ذرا غلط سمجھا گیا. جن میتوں کو غسل دینے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا وہ مرجے کا فتویٰ رکھ کر کے دیکھیے, انہوں نے کہا کہ کورونا ڈیزیز والی میت کو تیمم بھی نہیں دے سکتے تو ایسے ہی دفن کر دو. باقاعدہ جہاں پہ کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا ان میتوں کو بھی لوگ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے. لوگ سے میری مراد صرف مومنین کرام. چنانچہ انگلینڈ کا تو مجھے پتا کہ پھر 6-7 مراجے نمائندوں کی جانب سے ایک مشترک بیان آیا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے کہ کوئی میت کو چھونے کو بھی تیار نہیں. ہر کیس دوسرے سے مختلف ہو. پی پی ای کیا پروٹیکٹیو اکویپمنٹ وغیرہ جو بھی انگریزی کا لفظ ہے وہ پہن کے یہ غسل دینا واجب. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ آج شب قدر ہے, اعمال بھی ہیں اور آج شہادت کی رات ہے تو زیادہ رونے کا بھی دل چاہ رہا ہے. لیکن مختصر بات کہ فتوے کو جو بہت واضح تھا پھر بھی غلط سمجھا گیا اور نتیجہ یہ نکلنے لگا کہ مومنین کرام کے میتیں بغیر غسل و کفن کے اس حالت میں بھی دفن کی جانے لگی جب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب اس کے فوراً بعد مراجع کرام نے روزوں کا مسئلہ بیان کی تو اس کے اندر عبارت ذرا سی بدل. آغاز یہیں سے کیا کہ نہیں, روزہ تو واجب ہے اور بہت اہم واجب ہے اور فروع دین میں شامل ہے اور فرض ہے اور اس کی اہمیت ہے, یہ حتی الامکان رکھنا ہے. ہاں مجبوری میں معاف. غسل و کفن کا مسئلہ بھی اگر اسی طرح سے عبارت کے ساتھ آتا تو شاید مومنین اتنا غلط فائدہ نہ اٹھاتے. اس طرح آتا کہ جی میت کو غسل و کفن دینا تو لازم ہے, واجب ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, ہاں مجبوری میں یہ معاف ہے. ذرا انداز بیان سے فرق پڑ جاتا. وہاں پہ یہ نہیں آئے, وہاں اسٹارٹ ہوا دوسرے مرحلے سے کہ مجبوری کے عالم میں غسل و کفن ساخت. میں مراجع کرام کی توہین نہیں کر رہا, ان کے فتوے میں خرابی نہیں نکال رہا, میں اپنی عام قوم کا مزاج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب جب یہ رمضان کا مسئلہ یا کورونا کا, تو آغاز یہاں سے نہیں ہوا کہ بھائی کورونا کی وجہ سے روزے معاف ہیں. آغاز میں روزہ بہت ہے, پہلے روزے کی اہمیت بتائی, پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں اگر طبیب حضرات یہ کہہ دیں کہ روزے کا یہ نقصان ہے تو پھر وہ پوری تفصیل آ چکی ہے, اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. اس میں صرف دو چیزوں کی وضاحت ضروری. اچھا پہلے تو وہ جو فتویٰ تھا وہ زیادہ اس کا تعلق تھا مغربی ممالک ان سے جو ناردرن ہیمسفیئر میں جہاں پہ سمر ہے, روزے لمبے بھی ہیں اور گرمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ. آسٹریلیا یعنی ساؤدرن ہیمسفیئر کے لیے مسئلہ سب جگہ ایک ہے لیکن یہاں اس کی اتنی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ جو تھا کہ منہ میں چنگم بھی رکھ سکتے ہیں روزے میں اور بھی مختلف چیزیں, ککڑیاں کھائیے اور فلاں چیزیں, کیونکہ وہاں واقعا کورونا نہیں بھی ہوتا ہے تو 16 یا 18 گھنٹے کا روزہ اور انتہائی سخت گرمی میں وہ ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ تو اس کے بغیر بھی ہے. جو آسٹریلیا میں الحمدللہ ابھی تک تو الحمدللہ تو میں غلط کہہ گیا لیکن ابھی روزے ونٹر میں ہیں اور چھوٹے. لیکن بہرحال مسئلہ اپنی جگہ ایک ہے, طبیب حضرات اگر کہہ دیں تب جا کے روزہ اس کے اندر معاف ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر کوشش کریں کہ وہ طریقہ اختیار کریں کہ مثلا جاب سے چھٹی لے لیں, گھر سے باہر نہ نکلیں, دن گھر میں گزاریں. جو ایک عام طریقہ بھی بعض جگہوں پر ہے کہ دن بھر سوتے رہتے ہیں, رات بھر جاگتے رہتے ہیں گلف کے اندر, یہی طریقہ کار رمضان میں عام حالات میں بھی ہے. تو اس میں اب میں بھی آگے, میں ڈائبیٹک پیشنٹ, انسولین ڈیپینڈنٹ, مجھے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اب یہ ہے کہ چلیں روزہ رکھ لیا, باقی ایکٹیویٹیز بند کر دو. تو ماہ رمضان کی مجالس وغیرہ اب آج کل میں نے ختم کی, پھر بھی ہر سال پڑھنا پڑ رہی تھی لیکن بیماری ہر سال بڑھتی جاتی ہے. یہ تو وہ بیماری ہے جو ختم نہیں ہوتی, ہر سال بڑھتی. حالات اس سال کورونا کے ایسے ہو گئے कि अल असर का ये इमामबाड़ा जो हर एतबार से इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रौनक वाला इमामबाड़ा, इन मानों में कि इस मुश्किल तरीन हालात में भी यहाँ पे इमामबाड़ा खुला, सारे प्रोग्राम हुए, लाइटिंग हुई, चिरागा हुआ, जो कुछ भी एक इमामबाड़े की शान होनी चाहिए। लेकिन अगर पढ़ने वाला ना होता, और चूंकि बरादर मोहतरम जकी पंजू साहब की यह ख्वाहिश थी कि जब बाकी सारी चीजें हो रही तो मजलिस भी बहरहाल इस अंदाज से हो कि खतीब बयान कर रहा हो, कहीं से लाइव ना हो, खैर, इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी कबूल करना पड़ी और मैं बहुत ही माजरत खा हूं, सो सॉरी वो लोग कि जो मेरी जिस्मानी मजबूरी की वजह से उस अंदाज के मजलिस न सुन सके जो उनको इस वक्त इसी टाइम पर कई और मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर मिल रही होगी। अच्छा, अब यहां पर एक आखिरी बात बयान करूं ताकि इसका रब्त मेरे कल के मौजू से रहे और फिर आज बात आगे बढ़े। हमारे तमाम मराजे ने कोरोना के हवाले से रमजान के रोजों के मसले जो बताए, तमाम मराजे के वक्त आए, मुझे जाती एतबार से ये जुमला जरा तौहीन आमेज है लेकिन मैं तौहीन नहीं करना चाह रहा, रहबर इनकलाब आयतुल्ला खामेनाई के फतवे की वर्डिंग बहुत ज्यादा पसंद आई और इस वक्त जो हमारे टॉप फाइव मराजे हैं उनमें से एक मर्जी आयतुल्लाह उज़्मा आगा वहीद खुरासानी। मैं बाकी मराजे की इबारत की या वर्डिंग की तौहीन नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा इंडियन पाकिस्तानी एक माइंड सेट है ना, उसके एतबार से ये दो मराजे के फतवे ऐसे थे जिसमें हमारे यहाँ का इंडियन पाकिस्तानी माइंड सेट कोई गलत फहमी में मुब्तला नहीं हो सकता। अब हमारे आजकल मसला यह है कि हर आदमी तो मुश्तहिद बन गया, खास तौर पर जो लोग थोड़ा बहुत किसी इमामबाड़े या सेंटर में दीनी काम करते हैं वो तो ये समझते हैं कि उनसे बड़ा कुरान और हदीस का एक्सपर्ट कोई है। हर मसले के अंदर अपना पर्सनल ओपिनियन शरीयत का मसला बता के पेश कर देते। अब ये जितने महाराजे ने फतवे दिए ना, ये जो दो के मैंने नाम लिए, इनमें और दीगर महाराजे की तहरीर में फर्क क्या? बाकी तमाम महाराजे ने दो जुमले लिखे कि अगर तबीब ये कह दे कि ये आपके लिए नुकसानदेह है तो फिर आपको तबीब की बात मानना। अब ये इतना ज्यादा मसला एक्सप्लेनेशन में चला गया, हर आलिम ने इसकी वजाहत की पहली रमजान को या उससे पहले, और सबका आगाज वहां से था कि जो इबारत में था कि डॉक्टर्स कह दें ये मेडिकल साइंस का मसला है वो फैसला करे, लेकिन रहबर इनकलाब आगा खामेनाई के फतवे की वर्डिंग और आगा वहीद खुरासान टॉप फाइव मराजे में से एक है, इन दोनों की तहरीर जो है उसमें एक जुमला और एड है और असल मसला शरी वहीं से शुरू करना है इंडियन पाकिस्तानी माइंडसेट के लिए, और जो हमारे यहाँ हर बच्चा कच्चा आजकल अपने आप को इतना बड़ा मुस्तहिद समझता है कि आलिम की बात की भी कोई अहमियत नहीं। अब क्या फर्क है? असल मसला जो है और जो इन लोगों ने अपने फतवे में रिपीट किया कि तबीब की बात की भी अहमियत नहीं। अब हमारे यहाँ सारा का सारा पूरा क्राइटेरिया मेयार ऐसा रखा गया जो सब कुछ डॉक्टर्स, ऐसा नहीं। शायद किसी ने तवज्जो ना दी हो या शायद कोई सुनने वाला हो ही ना, जो मैंने जुमला कहा कि मेरे डॉक्टर्स मना करते आ रहे हैं फिर भी मैं रोजा रख रहा हूं, तो वो जो तमाम मराजे का फतवा है उसके अंदर क्या ये गलत नहीं हो रहा है? और कल मैंने जुमला मौला के मसाइब में कहा कि मौला ने रोजा रखा कि नहीं रखा, उसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं इस वक्त। असल मसला यह है कि अगर किसी मरीज को यह यकीन है कि रोजा मुझे नुकसान नहीं देगा और तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए नुकसान दे, वो डॉक्टर्स की बात नहीं मानेगा, वो अपने यकीन पर जाएगा, वो रोजा रखेगा, वाजिब है उसके लिए। हाँ, अगर कोई मरीज खुद कंफ्यूज है या कहे कि मुझे नहीं मालूम, तब फिर डॉक्टर्स का मरहला आता है, वो सेकेंड है। इस वक्त फतवा इस तरह से मशहूर हो गया कोरोना डिजीज, क्या ऐसा लगा कि पूरे मसाले का दारोमदार इन्हीं मेडिकल फील्ड के प्रोफेशनल्स पर, और क्योंकि इससे लोग बहुत से लोग गलत फायदा आम जिंदगी में उठाते हैं। यकीन, अगर मरीज को यकीन है मेरे लिए रोजा नुकसानदेह नहीं है और उसके डॉक्टर्स कह रहे हैं नुकसानदेह है, वो अपनी बात पर अमल करेगा। हाँ, जब खुद फैसला ना कर पा रहा हो, नहीं पता नुकसानदेह है कि नहीं, तो तबीब की बात मानना वाजिब, और वाइस वर्सा। वो ये है कि हमें यकीन है कि हमारे लिए रोजा नुकसानदेह और डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रोजा रख सकते हो, लेकिन हमें पता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि नुकसान होता, हमारे लिए रोजा माफ। पहले अपना यकीन है, खुद कंफ्यूज हो तो फिर तभी। अब ये कोरोना को रखिए एक तरफ, आम जिंदगी में डायबिटिक पेशेंट, ब्लड प्रेशर का मरीज, अल्सर का मरीज, बास कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, जो पुराने मरीज होते हैं ना वो अपनी हालत ज्यादा बेहतर जानते हैं। या मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा है कि जो डायबिटिक हो गया कि जी वो तो डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, मैं रोजा नहीं रख रहा। देखिए, वाकई जहां नुकसानदेह हो तो रोजा गुनाह भी हो जाता, लेकिन चूंकि अभी ऑस्ट्रेलिया मुसलमानों की इतनी तादाद ही नहीं है, यहां के मेडिकल रिसर्च ने डायबिटिक और रोजे पे इतना काम भी नहीं किया जैसे कोरोना डिजीज है। दुनिया भर के डॉक्टर इस वक्त अंदाजे लगा रहे हैं, सही मालूमात डॉक्टर्स के पास भी नहीं। एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ कहते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, इंसान इसी तरह सीखता। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुसलमान और फिर उसमें डायबिटिक इतने कम है कि यहां कोई रिसर्च नहीं, या वो सीधी साधी किताब के लिखी हुई बात पढ़ देते। लेकिन पाकिस्तान में आप जाइए, वहां भी एक से एक स्पेशलिस्ट। मैं तो दुनिया क्या घाट घाट का पानी पिए हुए हूं ना, दुनिया भर के डॉक्टरों से मेरा वास्ता, मुझे पता है कि डॉक्टर्स वहां के हमारे अगर इनसे बेहतर नहीं है तो ये मत समझिए कि इनसे कमतर। वहां पे डायबिटिक पेशेंट इवन इंसुलिन वाले को रोजा रखने की इजाजत। कब? आजकल। आजकल क्या मतलब? समर। आजकल क्या मतलब? डिहाइड्रेशन है, जो यहां नहीं फिर भी इजाजत। और चले पाकिस्तान से एक कदम आगे बढ़िए और पहुंचे इंग्लैंड, 18 घंटे का रोजा था 2 साल पहले, और इतनी सख्त गर्मी थी, लेकिन इंग्लैंड की डायबिटिक एसोसिएशन की वेबसाइट भी आपके पास मौजूद है, जाके देख लीजिए। उसमें बाकायदा मेन्यू के अंदर एक है अलग से फास्टिंग एंड डायबिटिक, और उसके अंदर इजाजत है पूरी। उन्होंने कहा ये एहतियात कीजिए और रोजा रखिए, क्योंकि इतनी कसीर तादाद में इंग्लैंड में मुसलमान है और इसमें इतने डायबिटिक है कि बाकायदा वहां पर बहुत रिसर्च हुई है और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि हर डायबिटिक के लिए रोजा नुकसानदेह भी नहीं है, हर एक के लिए इजाजत भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में मुझे पता है 20-22 साल से मैं यहाँ के डॉक्टर से निमट रहा हूं, वो तो एक बंधा हुआ फार्मूला बता देते कि नहीं रखिए रोजा। तो खैर, असल एक फिकही मसला भी इसके हवाले से वाजे हो रहा है जिसका कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर कि ये मसला कोरोना की वजह से बयान करने का मौका मिला। कोई भी बीमारी, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो डायबिटिक हो। अच्छा, कोरोना में फिर भी डॉक्टर्स की बात पर हम इसलिए तवज्जो देंगे कि मरीज को भी इसमें कोई तजुर्बा नहीं। डायबिटिक में तो ये है कि मसलन मैं 40 साल का डायबिटिक हूं तो मुझे एक तजुर्बा है ना, सर्दी में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, इंसुलिन में क्या होता है, कितने घंटे का फाका। तो कोरोना में तो सबके सब लोग इस वक्त जाहिल, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे वो मरीज। इसमें तो फिर भी डॉक्टर्स की बात को अहमियत देना। लेकिन बाकी बीमारियों में एक मरीज, खासतौर पर पुराना मरीज, बाज औकात एक आम डॉक्टर से ज्यादा तजुर्बा रखता है। तो मुझे भी मालूम है कि मैं रोजा रखता हूं तो कब मुझे नुकसान हो सकता है, कब नहीं। इसी तरह ब्लड प्रेशर का मसला, इसी तरह अल्सर का मसला। मसलन मेरी अपनी फैमिली में ऐसे वाकयात हुए, खातून एक मेरे रिश्तेदार प्रेग्नेंट थी, और ये आज से 40-35 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त एयर ट्रेवल में इतने ज्यादा सर्टिफिकेट नहीं मांगते थे, प्रेग्नेंट थी, उनको ट्रेवल करना था। जो उनके लिए डॉक्टर थी गायना, उसने कहा नहीं, आपकी डिलीवरी बहुत करीब है, ये आपके लिए ट्रेवलिंग जो है वो रिकमेंड नहीं। अब उनके 3-4-5 बच्चे हो चुके, उन्होंने कहा मुझे तजुर्बा है, मैं जानती हूं कि अभी कम अज कम इतने वीक बाकी। लेडी डॉक्टर कह रही है नहीं, ये टेस्ट और मेरा तजुर्बा बता रहा है कि बिल्कुल करीब है। और वो कह रही है नहीं, और फिर उन्होंने ट्रेवल किया, वाकई जो खातून का तजुर्बा ज्यादा कामयाब रहा, लेकिन डॉक्टर फेल हो। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके मेडिकल के प्रोफेशन पे अमल ना करें, वो वाजिब होता है, लेकिन वाजिब है अपने यकीन के बाद। तो अब ये जो कोरोना के हवाले से महाराज का फतवा आया, ये तो हमको इसलिए मानना कि इसमें किसी के पास कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन बाकी बीमारियों का नारा लगाकर जो ऑस्ट्रेलिया में कसीर तादाद में वो बीमार भी रोजा छोड़ रहे हैं, जिनके लिए रोजा वाजिब ही है, तो वो ये फतवे से और फायदा उठाएंगे। देखिए लिखा है, अगर तबीब कह दे तो रोजा छोड़ सकते हैं। पहला जुमला है अपना यकीन, अगर अपना यकीन हो कंफ्यूज हो तो फिर तबीब की बात मानना वाजिब। और ये सारी गलतफहमी क्यों पैदा होती है? मालूमात न होने की बुनियाद। जो मौला की कल हदीस चली थी, अच्छा मौला की जो कल की हदीस, मौला ने कहा हमारा शिया हमेशा इल्म रखता होगा, यहां आखिरी जमान, इसके लिए भी मौला के बहुत सारे इरशादात और फरमान हैं, लेकिन इनमें से एक सुन लीजिए। ये मौला का बराह रास्त तो फरमान नहीं है, लेकिन इससे रब्त मिलेगा मौला के फरमान। आखिरी जमाना, आखिरी जमाने का सबसे बड़ा मसला ये बताया जा रहा है, बल्कि ये कह दूं कि ये इतना बड़ा मसला है आखिरी जमाने का इल्म ना रखना, कि इसकी वजह से तो आदमी का दिल खौफ से धक धक करने लगता है। जरा जुमले को समझाना पड़ेगा। रिवायत में ये है कि इल्म ना रखने का मतलब क्या है? उलमा से नफरत, उलमा से दूरी, उलमा का मजाक उड़ाना, हर शख्स का अपने आप को आलिम समझ लेना। वो जो मैं मीडिया की खराबी एक बता रहा था, वो तो एक खराबी थी, दूसरी खराबी ये कि इस मीडिया की वजह से हर शख्स ये समझता है कि मुझे फतवा देने का इख्तियार मिल गया। फेसबुक के ऊपर जाइए, व्हाट्सएप के ऊपर जाइए, हर आदमी जिसकी थोड़ी सी मालूमात, थोड़ी सी, और वो इस तरह से बड़े बड़े मसाइल के अंदर अपनी राय बतौर फतवा दे देता। और मर्जे की इबारत को जो समझ नहीं सकते, कहते आगे सीसानी ने यह फरमाया। अच्छा मैं बहुत ज्यादा आज वक्त जाय नहीं करना चाहता, क्योंकि आज का मसला बहुत अहम मसला है जो बताना है। पहले एक हदीस सुन लीजिए। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की आखिरी तारीखों की हदीस। पैगंबर दुनिया से जाने वाले हैं माह मुबारक के सफर, शायद लफ्ज मुबारक में गलत कह गया, आवाम के एतबार से माह सफर। 28 सफर को पैगंबर की वफात हुई है, उससे कुछ पहले की रिवायत है। जिब्राइल पैगंबर से एक तरह की अलविदाई मुलाकात के लिए आए। अच्छा हमारे यहां ये भी ख्याल नहीं रखा जाता है, एक चीज होती है बाहर प्रोटोकॉल, एक हिफ्ज मराते, शख्सियतें बड़ी हैं, लेकिन किसी बड़ी शख्सियत का यह मतलब नहीं है कि बाकी सबको आप बिल्कुल ही जीरो बना दें। जो हमारी एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि बाज़ोकात मासूमीन के हालात बयान करते हुए अंबिया का तस्करा इस तरह किया जाता है जैसे नबी की तो कोई अहमियत ही नहीं, वो तो नौकरों जैसे हैं, बल्कि नौकरों से भी शायद एक दर्जे नीचे। माह मुबारक के रमजान में जो कुरान को जरा सा तर्जुमे से पढ़ रहे हैं उनको पता। अच्छा फिर अंबिया के बाद फरिश्ते और उसमें जिब्राइल। जिब्राइल की बस यही हालत है, जिब्राइल है क्या चीज, कुछ भी नहीं होता, एक नौकर है, खादिम है, मुलाजिम है, उससे भी निचले दर्जे का। यकीनन जिब्राइल का मासूमीन से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जिब्राइल की अपनी एक हैसियत। और कुरान करीम में जब ये लफ्ज आया कि जो जिब्राइल का दुश्मन है उसकी जो खराबी। अब मसला ये होता है कि इस वक्त वो अफराद, हम किसी की नियत पे शक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जाहिरी एतबार से कुछ लोग ऐसे हैं रिवायतों में जिनका तस्किरा, जिनको दीन के जरिए से अपनी मकबूलियत चाहिए, उनके पास एक ही क्राइटेरिया ऐसा होता है कि अवाम हमें कितना पसंद करते हैं। अब वो हो सकता है वो दीन की खिदमत के लिए ही कहते हो, लेकिन आमतौर पर जी हमारे इतने फॉलोवर हैं, इतने हमें लाइक कर रहे हैं, नंबर बढ़ता जाता है, दिल उनका खुशी से भरता जाता, चले यहां तक तो ठीक है, फितरत है आदमी के, लेकिन जब इसकी वजह से फिर वो दीन में दखल देते, अब मासूमीन के ऐसे फजाइल पढ़ना है जो किसी ने ना पढ़े हो ताकि लोग खुश हो जाए। अब वो सिलसिला आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर उनको खुदा बनाना पड़ता, क्योंकि इससे कम पे तो लोग राजी नहीं होंगे। राजी क्यों नहीं होंगे, क्यों तो बहुत सारे उलमा से उन्होंने सुने हुए। तो अब हमें कोई ऐसी चीज पढ़ना है जो आज तक किसी आलिम और खतीब ने ना पढ़ी हो ताकि मजमा का फा क्या इन्होंने बात कही हमने आज तक नहीं सुनी। तो अब ये कि मासूमीन को अब अल्लाह तक पहुंचा दिया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे से तबके की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से हमारी कौम की बदनामी हो रही। तो अब इससे ज्यादा क्या कहें, वो अल्लाह से भी आगे बढ़ा दिया। अब आए फिर हजरत अब्बास पर, ये जुमला तो बहुत मशहूर है ना, बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा है आजकल पाकिस्तान में, कि हमारी तो समझ में नहीं आता कि अब्बास खुदा है या खुदा अब्बास। अब ये तो एक तरीका है, मासूमीन तो इतना है, अब क्या करें, अब हजरत अब्बास और इसके बाद फिर ये सिलसिला चलेगा। दूसरी जानिब फजीलत बयान करने के लिए अब यह है कि दूसरों को घटाओ, चुनाचे अंबिया के रुतबे को कम किया, जिब्राइल के रुतबे को कम किया। जिब्राइल यकीनन अहले बैत के घर में आके खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन हर खिदमत अंजाम देने वाला नौकर तो नहीं होता, उसकी अपनी एक हैसियत हो सकती। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि औरत अपने बच्चे को बहला रही है, नाना आ गया नानी आ गया, उसने कहा मैं गहवारा हिलाता हूं, ये नौकर को थोड़ी माने, ये उनकी मोहब्बत है उससे। जिब्राइल का रुतबा अहले बैत के बराबर नहीं है, 19-20 का फर्क भी नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन एक हैसियत है। क्योंकि बाज ऐसे बेहतियाती के जुमले मैंने सुने तो मैं बीच में जरा सा बहक गया, वापस आता हूं। पैगंबर आए कि है जिब्राइल दीन मुकम्मल हो गया, कुरान आ गया, मैं दुनिया से जा रहा हूं। जिब्राइल की बेसिक ड्यूटी थी 1,24,000 अंबिया तक अल्लाह के अहकाम लाना, अब यह आखिरी नबी जा रहा है। आइम्मा पर उस अंदाज की वही तो नहीं आती, तो ये आखिरी नबी जा रहा है। जिब्राइल मेरे बाद कभी दुनिया में आओगे अल्लाह की तरफ से कोई जिम्मेदारी लेकर? कहा कि या रसूल अल्लाह आपके बाद में दुनिया में 10 मरतबा और आऊंगा, लेकिन अभी तक जो मैं आ रहा था उसमें और वो 10 मरतबा में एक फर्क होगा। अभी तक मैं आ रहा था अल्लाह की तरफ से कुछ लाता था जो अंबिया के जरिए से दुनिया को देता था, और अब जो आऊंगा 10 मरतबा तो वहां से कुछ लेके नहीं आऊंगा, दुनिया से कुछ लेके वापस खुदा को पहुंचाऊंगा। अब ये 10 में से 9 चीजें तो हर रिवायत में एक है, 10वीं चीज में एक रिवायत में एक लफ्ज है, दूसरी में दूसरा है, बाकी तो रिवायत 90% तो एक है। अभी तक मैं लेके आता था आसमान से जमीन पे कुछ छोड़ के जाता था, तौरात छोड़ के गए, जबूर छोड़ के गए, कुरान छोड़ के गए, और अब 10 मरतबा आऊंगा तो जमीन से कुछ लेके जाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिब्राइल क्या लेके जाओगे? कहा कि आपके बाद मैं 1 मरतबा आऊंगा और दुनिया से रहमत लेके चला जाऊंगा, दुनिया में रहमत नहीं रहेगी, मैं रहमत ले जाऊंगा। फिर एक और मरतबा आऊंगा, दुनिया से बरकत लेके चला जाऊंगा, दुनिया होगी चीजें भी बहुत होंगी, बरकत नहीं होगी, और फिर मैं 1 मरतबा आऊंगा और दुनिया के हुक्मरानों से अदल लेके चला जाऊंगा। हुक्मरान है, हुक्मरान का काम यह होता है कि अपनी रियाया के साथ अदल करें, लेकिन नहीं सब जालिम हो, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के वो डिक्टेटर हो या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के डेमोक्रेटिक हुक्मरान, हर एक के तरीके होते हैं। और फिर मैं 1 मरतबा आऊंगा इस दुनिया में और औरतों से हया लेके चला जाऊंगा, औरत होगी हया नहीं होगी, और फिर मैं 1 मरतबा आऊंगा और नौजवानों से गैरत लेके चला जाऊंगा। नौजवान है लेकिन इंतहाई बेगैरत किस्म का, उसकी बीवी किस हालत में जा रही है अभी तो फिलहाल तफसील में नहीं जाती, और फिर मैं इस दुनिया में आऊंगा और पैसे वालों से सखावत लेके चला जाऊंगा। पैसा है अरे के वह भरा पड़ा हुआ, लेकिन एक दमड़ी देने को भी तैयार नहीं, और फिर मैं इस दुनिया से आऊंगा और फकीरों से सब्र लेके चला जाऊंगा। ठीक है पैसे वाले सखावत नहीं कर रहे, लेकिन फकीर के पास भी एक सब्र होता था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। तभी वो रिवायतें आती थी कि पहले जमाने में लोग पैसे लेके निकलते थे, है कोई लेने वाला नहीं होता। तो ऐसा माहौल तो कभी नहीं रहा ना कि दुनिया से गुरबत खत्म हो, यह सिर्फ होगा हुकूमत इमाम जमाना के बाद। अगर फकीर अपनी गुरबत किसी के सामने बताने को तैयार नहीं था आखिरी जमाने में, ये सातवीं बात हो गई। सातवां जो अब तक मैंने बताया, फकीरों से सब्र लेके जाऊं। फिर आठवीं बात पे इख्तिलाफ, मैं आऊंगा और दुनिया से हिकमत लेके चला जाऊं, हिकमत विजडम। जैसे आजकल ये इंटरनेट है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन ना नॉलेज है ना विजडम। और फिर मैं आऊंगा दुनिया में नवी मर्तबा और इल्म लेके चला जाऊंगा, इल्म का खात्मा हो जाएगा। अब मैंने कहा कि ये नवा स्टेज, जब ये नवा स्टेज आता है तो दिल धड़कने लगता है। क्यों? जिब्राइल ने कहा फिर मैं दसवीं और आखिरी दफा आऊंगा और दुनिया वालों मोमिनों से उनका ईमान लेके चला जाऊंगा। होंगे सब मोमिन, नाम भी सबके मोमिनों जैसे होंगे, लेकिन ईमान कहीं नहीं होगा। या रसूल अल्लाह, आपके बाद 10 मरतबा आऊंगा और हर मरतबा इस दुनिया से अल्लाह की एक न एक नेमत लेके चला जाऊंगा। अच्छा, अब इसका यह मतलब नहीं है कि वो जिब्राइल जबरदस्ती लेके जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप घर से बाहर निकले, सड़क पे आप जा रहे हैं, आपने देखा सड़क के ऊपर मसलन नऊज़ुबिल्लाह कुरान पड़ा हुआ या कोई दुआओं की किताब कोई फेंक के चला गया है, आप दौड़ के बढ़े, आप उसको उठा के ले गए, छीन के किसी से नहीं ले गए। वो जो घर वाला था, जो आदमी भी था, उसकी निगाह में ये चीज बेकार थी, वो फेंक गया नऊज़ुबिल्लाह। हमें उसकी अहमियत पता, हमने उसको इसीलिए उठा लिया कि हमें पता दुनिया में किसी को रहमत चाहिए ही नहीं। पूरी हदीस नहीं पढ़ रहा हूं, ये तो एक अलग अशरा, बल्कि काफी उलमा ने अशरा पढ़ा है, क्योंकि ये तो सेट अशरा, 10 चीजें हर चीज पे एक मजलिस। मैं तो यहां नवी चीज इल्म और उससे मिलकर फिर 10वीं चीज ईमान, जब इल्म गया तो ईमान भी जाने वाला। इसीलिए आज के आयत जो मैंने तिलावत की, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैताना, ऐ हमारे रब हिदायत के बाद दोबारा हम गुमराह ना होने पा, बहुत बड़ा खतरा। तो आइए पहले सिर्फ एक आध मिसाल दे दूं कि इस हदीस का मतलब क्या। जिब्राइल ने कहा मैं आके रहमत ले जाऊंगा, क्यों ले जाऊंगा, छीन के नहीं ले जाऊंगा, दुनिया वालों को रहमत चाहिए ही नहीं, लोगों ने उठा उठा के रहमत अपने घर के बाहर कूड़े के ढेर में फेंक दी। जिब्राइल को तो पता है रहमत खुदा क्या है ना, देखा उन्होंने रहमत खुदा की ये तौहीन हो रही है, दौड़ के आए उठा के लिए। आप कहेंगे मौलाना ऐसा कौन आदमी है। अच्छा, ये भी एक जुमला अर्ज कर दूं कि इसका ताल्लुक मोमिनों के पूरे माहौल से, जिसको रहमत नहीं चाहिए, एक नहीं सैकड़ों हैं, हदीसें हर एक में सुनी है, गौर कोई नहीं करता है। रिवायत यह है कि मसलन जिस घर में कुत्ता होता है वहां रहमत नहीं होती है। जब हम अपने घर में कुत्ता लेकर आए, इसका मतलब है हमने रहमत को उठा के बाहर फेंक दी। दो चीजें एक साथ जमा हो ही नहीं सकती, ना किसी मुश्तहिद का फतवा है, ना किसी आलिम का अपना ज़ाते ख्याल है। ये हदीसें मासूम है और बहुत मशहूर हदीस है, हत्ता घर की चौकीदारी और पहरे के लिए भी कुत्ते की इजाजत नहीं। अक्सर मरजे के पास वो है देहात में खेतों की हिफाजत के लिए या जानवरों के गल्ले की हिफाजत के लिए। अब इस वक्त जो नस्ल चल रही है हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान वाली, जो ऑस्ट्रेलिया में आई है, वो तो शायद कुत्ते रखे क्या, कुत्ते से डरते भी होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है और उसके बाद की जनरेशन आ रही है, ये मैं कुत्ते पर पूरी मजलिस नहीं पढ़ रहा हूं, कल की पूरी मजलिस बकौल साहब के कमेंट्स तो आते रहते हैं ना मेरे पास, मछली पर थी। अरे एक छोटा सा वाकया था, मछली छिलके वाली और मछली के तेल का, मछली मजलिस क्या थी, कल तो मछली ही मछली हो रही थी। वो कहेंगे आज मजलिस क्या है, कुत्ता ही कुत्ता हो रहा है। तो एक छोटी सी बात अर्ज कर रहा हूं कि ये बहुत मशहूर हदीस है, इसलिए कुत्ता घर में लाने का मतलब यह है कि आपने उसको उठा के रहमत को उठा के बाहर फेंक दिया। चले छोड़े कुत्ते, जिस घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो वहां पे रहमत खुदा नहीं आती। अब आप जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने घर में लेके आ रहे हैं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं ला रहे, ये आप रहमत खुदा उठा के बाहर फेंक रहे। आपने बाहर फेंक दी, जिब्राइल तो देख रहे हैं, वो उठा के इसको ले गए। वो सारी हदीसें जमा कर ली, जिस घर में गैम्बलिंग यानी जुए के आलात हो वहां रहमत खुदा नहीं आती। और ये जुए के हालात चाहे अलग से हों और चाहे वो कंप्यूटर गेम की शक्ल में हो, कंप्यूटर के कितने ही ऐसे खेल हैं जो हराम हैं, वो तफसील नहीं बताना है। मेरे पास तो मसला ये है कि बात लंबी छेड़ देता हूं, वक्त कम होता है। चले और बातों को छोड़ें, आखिरी बात ही कह के ये बहुत, ये भी खुद अपनी जगह बहुत लंबी बात है कि जिब्राइल आखिर रहमत खुदा लेने इस दुनिया से क्यों आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। नऊज बिल्ला, ये मिसाल मुझे देते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बार बार देना पड़ रही है कि आप एक मरतबा सड़क से गुजरे, आपने देखा हर घर वाले ने कुरान को उठा के बाहर फेंक दिया है, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप समेटेंगे उसको, जिब्राइल यही देख रहे हैं। जिस घर में कोई बेपर्दा औरत रहती है, जो नामहरम के सामने बेपर्दा जाती है, वह रहमत खुदा नहीं आती। अब आइए सर्वे करें मोमिनीन कराम के घरों का, रहमत खुदा उठा के बाहर फेंक दी कि नहीं फेंक दी। मैं मिसालें नहीं देना चाह रहा हूं इसलिए कि वक्त नहीं, कोई बुरा माने या अच्छा माने इससे तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहां कौन सा मौका ऐसा है कि जहां रहमत खुदा नहीं फेंकी जाती? हमारे यहां अगर बर्थडे पार्टी हो, हमारे यहां चाहे शादी ब्याह हो, हमारे यहां चाहे ईद का कोई फंक्शन हो, हमारे यहां चाहे नजर व नियाज हो, हमारे यहां चाहे मजलिस हो, बेपर्दा औरत उनके साथ वाले मर्द वो गैरेज में बैठे हैं, बाहर खड़े हुए हैं, उन्हीं औरतों में से मर्द, मर्दों में से औरतें, खैर बात कम भी फैल रही है, इसका मतलब क्या? मैं इस वक्त पर्दे पे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं रहमत उठा के बाहर फेंक दी। एक जगह ये दो चीजें जमा नहीं हो सकती, तो आप जिब्राइल क्या ये बर्दाश्त करेंगे कि आपने अपने घर से कूड़े की शक्ल में रहमत फेंक दी, वो उसको बाहर देख ले? नहीं, इसी तरह फिर बरकत आती, बरकत, बरकत की तारीफ मासूम ने यही की है कि अल्लाह इतना तुम्हें दे कि तुम्हारी सारी जरूरियात इज्जत के साथ पूरी हो जाए, भले $50 मिले लेकिन सारी जरूरियात पूरी हो जाए, ये बेहतर है उस $1 मिलियन से कि उसके बाद भी आदमी का ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया। अब मैं समझा नहीं रहा हूं, ये तो कभी अलग से अशरा या खमसा सुनिएगा एक एक चीज पर। जिब्राइल आके देखा बरकत वाली चीज, जितनी चीजें हमारे यहां बरकत वाली हैं सब उठा के बाहर फेंकी जाती हैं कि नहीं फेंकी जाती? क्या क्या चीजों से रिस्क से बरकत उड़ जाती है, यह पूरा एक मौजू। लेकिन अब मैं बाकी सारी चीजों को बाईपास करता हूं, औरतों में औरतों से हया लेके चला जाऊं, छीनूंगा नहीं, औरत को हया चाहिए ही नहीं, ये बिल्कुल फजूल चीज। नौजवान को गैरत नहीं चाहिए, उसको इसी में मजा आता है कि उसकी बेपर्दा औरत बन ठन कर उसके दोस्तों से हाथ मिलाती फिरे और उनके साथ एक जगह एक ही जगह बैठे, तो पूरा एक मौजू। आठवीं चीज है मैं हिकमत ले जाऊंगा, नवीं चीज है मैं इल्म ले जाऊंगा। जब ये यहां तक बात पहुंच जाए, गोया पानी जो है वो सर तक पहुंच गया, तो अब ईमान, अब हिकमत नहीं, वक्त नहीं है, वरना इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल मेरे पास आई थी। खाली किताब से मसले पढ़ना भी काफी नहीं होते, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखना पड़ता है, इम्प्लीमेंट किस तरह होगा। वो ले जाएंगे जिब्राइल, हिकमत नहीं रहेगी, नवी चीज इल्म। क्या मतलब इल्म ले जाएंगे? आखिरी जमाने के लोगों को इल्म नहीं चाहिए, इल्म कैसे नहीं चाहिए, आलिम नहीं चाहिए, वो चाहिए जो उनके मतलब की बात करे और जो जरा हक की बात करे वो नहीं चाहिए। तो इससे ज्यादा तो हम जानते हैं, रिवायत में यही कि अल्लाह दुनिया से इल्म उठाता है, यानी उलमा, सही उलमा को उठा लेता। अभी बहुत लंबी बात हो जाएगी, इल्म पर कल भी बात हो गई, इल्म पर आज भी बात हो गई शुरू में। जब जिब्राइल जब ये स्टेज आ जाए कि कौम की हालत यह हो कि हमें इल्म नहीं चाहिए, इल्म सीखने को कोई तैयार नहीं, जहां कोई इल्म वाली बात कहे कि मौलाना आपने तो टाइम बर्बाद कर दिया, मजलिस क्या पड़ी, मछली पड़ी आप। खैर, मैं तो कभी अपने आप को आलिम कहता ही नहीं हूं, ना उलमा में शामिल, और मेलबर्न में तो मैं कह भी नहीं सकता हूं। मेलबर्न दुनिया का वाहिद शहर, बहुत से लोगों के लिए नई बात होगी, जहां बाकायदा मेलबर्न के तमाम मोमिनीन ने मीटिंग करके ये ऐलान किया था कि हम इनको तो आलिम मानते ही नहीं हैं। सिर्फ तीन फैमिलीज ने इससे इख्तिलाफ किया था, तमाम मोमिनीन ने, लेकिन खैर ये मैं तो जाती बात होगी, مراجع نہیں چاہیے، مجتہدین نہیں چاہیے، اخباری علماء. اخباریت ہمارے یہاں قابل احترام اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن جو جو اپنے آپ کو آج اخباری کہتے ہیں وہ اخباری نہیں ہے، ان کو کہیں سے اطلاع مل گئی کہ یہ لوگ اخباری وہ ہیں جو مجتہدین کو نہیں مانتے، اور ہم کو مجتہدین نہیں چاہیے، اسی کی ہم نے آڑ لے لی. علم، علماء، مجتہدین. اس کے بعد اب مسئلہ بہت کچھ کہنے کو دل چاہ رہا، سینہ پھٹ رہا، لیکن وقت نہیں. اس کے بعد جب علم سے لوگوں کو نفرت ہو جائے، کتنی عجیب بات، کوئی اسپتال نہیں چل سکتا بغیر ڈاکٹر، اور کوئی گیرج نہیں چل سکتا بغیر میکینک، کوئی مکان نہیں بن سکتا بغیر بلڈر، لیکن دین ہمیں چاہیے بغیر عالم، وہ ہم خود پڑھ لیں گے. وہ فیس بک ہے ہمارے پاس، وہ انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس، وہ واٹس اپ ہے ہمارے پاس. جب علم سے اتنی نفرت ہو جائے، تب یہ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، پھر میں آخری مرتبہ آؤں گا اور دنیا سے ایمان لے جاؤں گا. کیا مطلب؟ مومن نے بھی اپنا ایمان اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیا، بعض اوقات اس کو پتا بھی نہیں چلتا، وہ وہی حالت ہو جاتی ہے علادین کی شہزادی والی، جادوگر پرانا چراغ دے دو، نیا چراغ لے لو، کہتا وہ شہزادی کو پتہ ہی نہیں تھا پرانا چراغ کتنا ہے، میں اس نے دے دیا جادوگر، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے جا رہا. کیسے؟ اب سنیے دو تین روایت. مولا کی ایک حدیث فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ مشکل ترین زمانہ ہوگا اپنا ایمان بچانے کے لیے. کورونا کورونا کورونا، بھائی جان خطرے میں ہے، جان خطرے میں ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کرو، لوگوں سے ہاتھ نہ ملاؤ، لوگوں سے گلے نہ ملو. اور جب یہی چیز ہم لوگ کہتے تھے ایمان کے حوالے سے، نامحرم سے ہاتھ نہ ملاؤ، نامحرم سے گلے نہ ملو، نامحرم سے ایک ڈسٹینس رکھو، مذاق اڑایا جاتا تھا. مولانا یہ 21ویں صدی میں سب کیا ہو رہا، کیا ایسا ہو سکتا؟ آج کی تو سوشل لائف ہی اس کے بغیر نہیں، ایک کورونا نے سب کا دماغ ٹھیک کر دیا. اگرچہ اس میں ایک بہت بڑا خطرہ میرے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ کورونا کے بعد کیا ہوگا. یاد رکھیے، دنیا کی جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے، اچھی خاصی میں نے پڑھی ہے، جب بھی اس قسم کا کوئی پرابلم آیا، اس سے شیطان نے فائدہ اٹھا کے کوئی نہ کوئی ایسی تبدیلی معاشرے میں کی. ایک چیز بار بار ہم کو بتائی جاتی ہے نا، کہ جب تم کسی اہم ایمان کے مرحلے سے گزر رہے ہو تو اس کے بعد کی فکر کرنا. رمضان کے تم مرحلے سے گزر رہے ہو، دیکھو آفٹر رمضان، رمضان کو بھول نہ جانا، یہ نہ ہو کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں. بھائی رمضان کے بعد بات کریں گے، کیوں کہا ابھی آج کل روزے ہیں نا، تو باتیں کریں گے تو کسی کی غیبت ہو جائے گی تو روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا، رمضان کے بعد تو روزے نہیں ہوں گے، جتنی غیبت کرو بیٹھ کے کیا آ رہا ہے. حج میں اکثر یہ ہوتا ہے میرے ساتھ بہت زیادہ، میں تو ہوں ایسا آدمی کہ حج زبان پہ آیا اور میں بہک کے کہیں چلا گیا. حج میں ایک احرام پہنا جاتا ہے، پھر آدمی بہت شریف بن جاتا. اب کسی کے خلاف غصہ آ گیا، کہتا ہے بس دو دن ٹھہر جائیے، ابھی تو میرے جسم پہ احرام احرام اتر جائے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. بھئی احرام پہنایا اس لیے گیا تھا کہ احرام اترنے کے بعد بھی اتنے ہی شریف رہو، تو تم ابھی سے ہی یہ بتا رہے ہو کہ تم نے جو احرام پہنا پہنا ہی نہیں. توبہ، جب کوئی گناہ کرو اپنے گناہ کی توبہ کرو کہ غلط کیا، اس کی پہلی شرط ہے، اور دل میں ارادہ کرو آئندہ کرنا بھی نہیں ہے یہ گناہ، وہی تو توبہ ہے. اگر آپ نے کہا نہیں اب تک تو غلط کیا، آئندہ کی آئندہ دیکھیں گے، توبہ ہو ہی نہیں، چاہے وہ آج کی رات ہو چاہے پرسوں کی رات ہو، یعنی دو دن بعد شب قدر شب توبہ. بہت سے لوگوں کے جملے ایسے ہوتے ہیں، بھئی یہ فلاں چیز رمضان کے بعد کریں گے، رمضان میں تو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا یہ غلط ہے نا، اس کے بعد جیسے صحیح ہو جائے گا. پھر رمضان کی ٹریننگ کا مطلب یہ کہ 11 مہینے شریف رہو، تو اب یہ کورونا کی ٹریننگ کا مطلب یہ کہ اس کے بعد بھی اس کا خیال کرو. لیکن شیطان نے اب تک کیا کیا کیا، یہ آج مجھے کہنا تھا لیکن اب ٹائم نہیں رہا، پتا نہیں آج کامنٹ کیا آئے گا، کتے کی مجلس میں نے پڑھی ہے یا کیا مجلس پڑھی ہے. اب میں اصل موضوع پر آ جاؤں، موضوع اب شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخری زمانے، مولا کائنات کی حدیث، مولا آخری زمانہ کہتے کسے، ذرا یہ بتائیے. फरमाया याद रखो, जब माशरे में 15 चीजें फैल जाएं समझ लेना ये आखिरी जमाना। माना क्या 15 चीज है? जब माल इमाम को लोग अपना हक समझ के हड़प कर ले, और जब जकात और इस्लामी वाजिबात को लोग मुगनेमा ये समझे जैसे काफिरों से लूटा हुआ माल हमारे हाथ में आया। वाइजा कान अल अमानतो मुगनेमा, हाँ जब कोई तुम्हारे पास अमानत रख के जाए, जब वाजिबात दीन जकात फितर वगैरह को लोग मुगरमा कर्ज बोझ समझने लगे, जैसे टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, सारे अकाउंटेंट दुनिया में रखे जाते हैं इस काम के लिए कि आपको टैक्स से बचने के तरीके सिखाए। टैक्स एजेंट का काम यह नहीं है कि आपको टैक्स देना सिखाए, टैक्स एजेंट का काम है आपको टैक्स बचाना सिखाए। यही लोग उलमा से भी तवक्को करते हैं कि भाई कोई ऐसा तरीका बताइए कि ये खुम्स भी बच जाए, जकात भी बच जाए, ये फितरा भी बच जाए। और जब अमानत, कोई आपके पास अमानत रखे, इज़ा कान अल अमानत तो मुगनेमा, लोग समझे अमानत नहीं रखी है, कोई माले गनीमत काफिर का हाथ आ गया है हड़प कर जाओ। वा इज़ा कान अता अता अर रजुल इमरातहु, और हालत यह हो कि हर शख्स अपनी बीवी की इताअत कर रहा है, वासा उम्मुहु, और माँ की नाफरमानी कर रहा है। बीवी की इताअत की जा रही है, माँ की नाफरमानी की जा रही है। वर्रा सिद्दीक जफाबा, दोस्त के साथ तो नेकी की जा रही है और बाप के साथ जुल्म किया जा रहा। मौलाना कल रात को बड़ी, कल का दिन तो बहुत मसरूफियत का गुजरा। भाई क्या मसरूफियत थी? एक दोस्त आ गया, उसने कहा जरूरी काम है मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं भूखा भी था, मैं प्यासा भी था, रोजा भी था, लेकिन जाना पड़ा। भाई क्यों गए आप? कहा मौलाना आपको क्या पता दोस्ती के क्या रिक्वायरमेंट्स और तकाजे और डिमांड होती। अब आपने अगर रात को एक बार से दूसरी बार कह दिया बेटा पानी पिला दो, बड़े मियाँ को चैन ही नहीं है, देखा ही नहीं, दिन भर काम करके आए थके हुए हैं, बड़े मियाँ तो दिन भर पड़े रहते हैं बिस्तर के ऊपर, पानी पिला दो, चाय पिला दो, फुला जगह ले जाओ। दोस्त के लिए लोग पूरी पूरी रात हराम कर देते हैं कि भाई दोस्ती इसी का नाम। अब आप एक ख्वाहिश जाहिर करें तो बड़े मियाँ भी हो गए, सठिया भी गए, उनका दिमाग भी खराब हो गया। कहा कि जब दोस्त के साथ नेकी की जाए और बाप के साथ जुल्म किया जाए। वर्तफात अस्वात फिल मसाजिद, जब मस्जिदों के अंदर झगड़े और हंगामे शुरू हो जाए, मार्केटों में तो होते थे, बाजारों में तो होते थे, खानदानों में तो होते थे, मस्जिदों में झगड़े शुरू हो रहे हैं। एक एक चीज की वजह जरूरत नहीं है, इसलिए कि हर आदमी अपनी आंख से चीजें देख रहा है। वह उक्रमुर रजुल, अजीब चीज, आदमी दूसरे की इज्जत करे। क्यों इज्जत करते हैं? किसी की उम्र की वजह से की जाती, किसी के इल्म की वजह से इज्जत की जाती, किसी की इबादत की वजह से, यही चीजें तो है ना, क्यों हम किसी की इज्जत करते? कहा नहीं, ये तो पहले जमाने की खसूसियत है कि इल्म और तकवा और उम्र की वजह से इज्जत हो, आखिरी जमाने में इसलिए नहीं होगी। उक्रमुर रजुल, आखिरी जमाने में किसी की इज्जत की जाएगी शर्रा मखाफत ही, उसकी बदमाशी की वजह से, डर की वजह से, कि अगर इसकी इज्जत ना की है तो बदमाश आदमी है, सबके सामने तौहीन कर दे। जब लोग किसी के शर से डरते हुए उसकी इज्जत कर रहे हो कि भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में, इसके सामने कुछ ना बोलो। इज़ा कान ज़ईम अल कौम यरज़ुलुहुम, और जब किसी कौम का लीडर उसमें सबसे जलील और पस्त आदमी को बना दिया जाए, सबसे घटिया आदमी उसे कौम का लीडर बना दिया जाए। पाकिस्तान के जैसे एक लीडर ने किसी के लिए कहा था ना कि फला आदमी तो इतना घटिया कि मैं उसको अपना चपरासी भी ना रखूं, आज उनके एडवाइजर बने हुए। जब कौम की हालत ये हो जाए कि अपने में से जलील लोगों का इंतखाब करके अपने सर पे बिठाए, ज़ईम अल कौम, कौम का लीडर। रिवायत क्या पढ़ रहा हूं, मौला से पूछा गया, मौला ये आखिरी जमाना कहते किसे है जिसका आप बार बार तस्किरा कर रहे? कहा कि जब किसी की बदमाशी और शर की वजह से लोग उसकी इज्जत करने पे मजबूर हो गए। जब जलील तरीन आदमी को कौम अपना लीडर बना ली वत्तखिज़ुल मआज़िफ़ वल क़य्यनात, तीन चीज। और जब नाच गाने की महफिलें सजाई जाए, बेहयाई के इज्तिमाआत कायम किए जाए और बेपर्दा औरतें एक जगह जमा हो मर्दों के साथ, यह है आखिरी जमा। लबसुल हरीर व शरबुल खमर, रेशमी लिबास पहना जाए और शराबें पी जाए हमारे एक आम माशरे में, एक आम मोमिन माशरे में। जब कभी भी गुनाहों का तस्करा होता है और किसी की तारीफ की जाती है तो हमेशा शराब से बात होती है ना कि भाई वो फूला हो तो शराबी। पांचों ऐब शरई की जो इस्तेला हमारे यहां उसमें शराब टॉप ऑफ द लिस्ट, और मौला शराब को इतना आखिर में लेके आ रहा कि ये जो इससे पहले की खराबियां हैं ना, ये है हमारा असल प्रॉब्लम। अभी तक तो इस वक्त तक जो जनरेशन हमारी यहां पर है, शायद अगर आप 100 मोमिनों को देखें शराब पीने वाले सिर्फ 10 हो, हो सकते हैं आप तो कहें एक भी नहीं है, लेकिन वो आपकी मालूमात, मेरी मालूमात में हमारी कम्युनिटी में शराब आ चुकी है, लेकिन 100 में 10। लेकिन बाकी चीजें 100 में 90 मिलेंगी आप, गाने बजाने की महफिलें, बेपर्दा औरतों की महफिलें, मस्जिदों में झगड़े, किसी की बदमाशी की वजह से उसका एहतराम कर लेना। तो जो चीज ज्यादा फैल गई मौला ने पहले जिक्र किया शरे बोला वह कसरत जिना, और कहा आखिरी जमाने में जिना कसरत के साथ होगा। लफ्ज बार बार जबान पे लाना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन कुरान में भी लफ्ज इसी तरह आया है, हदीस में भी लफ्ज इसी तरह आया, हरामकारी का गुना। यहां पे सिर्फ एक बात कह दूं, वाकन फिर भी आज भी मैंने पूरा इरादा से मेरा जरा सा बयान कम रखूंगा, लेकिन घंटे से 5 मिनट ऊपर ही हो जाएंगे। बस ये आखिरी जुमले, जिना कसरत के साथ होगी। अच्छा, सारी चीज मौला इस्लामी और ईमानी माशरे की बता रहे हैं, ये अपने लोगों की बात हो रही है। मसलन इमाम ने कहा ज़कात तो खुम्स को बोझ समझेंगे, कौन बोझ समझेगा, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई गोरा, कोई एथेस्ट, तो मानता ही नहीं, ये तो अपनी बात है ना। तो कहा कि हमारे यहां मोमिनों के दरमियान जिना कसरत से हो, कसरत लफ्ज आया कसरत बहुत ज्यादा हो। इसमें छोटी सी बात, वो भी खाली इशारा, तो कल की जो यस्टरडे की मजलिस थी, अगर मैं वेस्ट ना करता, लोगों के कमेंट सुन के लगा मैंने वो वेस्ट कर दिया, अगर वेस्ट ना करता तो शायद ये सारी बातें जो ज्यादा अहम लग रही हैं तफसील से बयान करने का मौका मिल जाता, लेकिन खैर अब जो हो गया सो हो गया। इसमें एक छोटी सी बात, और ये वही बात है जो मेरे 2 दिन के असल मौजू से रिलेटेड। एक तो होता है हरामकारी या जिना का गुना जानबूझकर सोच समझ के, वो तो है ही अपनी जगह, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं। लाइल्मी की वजह से हमारे यहां ये गुना बढ़ रहा है, ऐसे घरानों में जो ये लफ्ज जिना सुनने को तैयार नहीं थे, ऐसे घराने शरीफ इज्जत वाले जिनके यहां एक घर के अंदर शराफत का एक ऐसा माहौल है कि इस किस्म के अल्फाज उनकी जबान पे नहीं आते। देखिए बहुत सारे अल्फाज ऐसे जो बोल दिए जाते हैं, लेकिन हर घर का अपना एक माहौल होता, हर बाप अपने बेटे की एक खास ट्रेनिंग करता। अब जैसे हम लोग जब मजलिस पढ़ना सीखते थे ना, तो हमें बताया जाता था बहुत से लफ्ज तुम आम गुफ्तगू में चाहे बोल जाओ, मिंबर पे ना बोलना। जैसे मिसाल दे दी, लफ्ज यार मिंबर के एतबार से ये बदतरीन लफ्ज माना जाता। अभी तो मैं पता नहीं कितने खतीबों को सुनता हूं, यार एक नारा तो लगा दू, लगता ही नहीं है कि वो मिंबर है, ये किसी बस स्टेशन पे बैठे हैं, किसी चायखाने में या शीशा बाग है। ये तो ट्रेनिंग होती है, जो बगैर ट्रेनिंग के लोग आते हैं उनकी उनसे ये गलतियां ज्यादा होती हैं। तो अब ये लफ्ज है जिना, उमूमन जो हमारे एक आम माहौल है उसमें घरों में शायद इतना न बोला जाता हो, इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में आके तो काफी चीजें चेंज हो गई, जहां लफ्ज नहीं बोला जाता। इमाम ने कहा वह कसरत से ये गुना होगा, कौन सा गुना हो? वो वाला नहीं जो फौरन जहन में आता, ये वो वाला गुनाह जो लाइल्मी की वजह से होता है। क्या मतलब लाइल्म? जो मेलबर्न में एक फितना दाखिल हो चुका है और अगर इसकी बर वक्त रोकथाम नहीं की गई तो ये बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। वो क्या? गलत तलाक, जिसके नतीजे में ये औरत जो अपने आप को आजाद समझ रही है कि मुझे तलाक मिल गई, इसको तलाक नहीं मिली। और जब तलाक नहीं मिली है और ये अपने आप को आजाद समझ के दूसरी शादी कर रही है, वो दूसरी शादी नहीं, वो गोया बगैर शादी के ये लोग रह रहे हैं। शरीफ घराने, इज्जतदार घराने, सादात घराने, जहां ये तसव्वुर नहीं हो सकता गुनाह का, लेकिन लाइल्मी की बिना पर उन बेचारों को पता नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन गुनाह हो रहा है। ठीक है, फिका में थोड़ी सी इसकी गुंजाइश है जब इतनी लाइल्मी में ये हो जाए, लेकिन उसके असरात तो अपनी जगह होते हैं ना। जब मैंने मेलबर्न में पहली बार कदम रखा था, उस वक्त यहां कोई तसव्वुर भी ना था तलाक का। और अब जब मैं कब्र में पांव लटकाए बैठा हूं, आखिरी मेरी सांसें हैं, कुछ पता नहीं होता अगले साल रमजान के अंदर आपके दरमियान होऊंगा या आलम बरजख से आपकी जियारत कर रहा हूं इस कसरत के साथ। अच्छा, अब किसी वजह से इस्लाम ने तलाक की परमिशन दी, लेकिन कम अज कम सही तरीका तो हो ना। अब ये देखिए, फिर ऐसा जुमला जबान पे आ गया कि आधा घंटा इस पे निकल जाए लेकिन मैं रुक रहा हूं। ये प्रॉब्लम वही है, मालूमात ही नहीं। जब लोगों को वजू करने के मसले नहीं मालूम कि जो दिन में पता नहीं कितनी बार करना पड़ता, ये मसले तो कोई सीखता ही नहीं। ये तो मौला जो बार बार कह रहे, हमारे शिया में कभी जिहालत की कमी नहीं होगी, इल्म नहीं है तो ले रहा है तालिब इल्म, उसमें ये चीजें भी आती। लेकिन खैर, मौला ने कहा जब ये जमाना बन जाए तो बस समझ लेना वो आखिरी जमाना, और फिर हर वक्त एक्सपेक्टेशन रखना। किस चीज की? आंधियों की, जलजले की, कुदरती आफात की, बीमारियों की और बलाओं की। हर वक्त जब ये सारा माहौल बन जाए तो मौला इससे बचने का तरीका क्या है? एक तो दुआएं सिखाएं, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, की मौला की बताई हुई दुआ, ये ईमान को बचाती है। और दूसरे वो तरीके इख्तियार करना जो ईमान को बचाते हैं। वो क्या तरीके? तो पूरा एक अशरा है, लेकिन एक मुख्तसर सा उसका तरीका, एक छोटी सी हदीस की रोशनी, वो इंशाल्लाह कल आएगा। मौला की शहादत की यह चार रोजा मजालिस के सिलसिले की आज तीसरी मजलिस है, कल 21 रमजान का दिन, तो डे टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के टाइम के एतबार से 4:10 दिन की मजलिस है, जो इफ्तार से पहले मुकम्मल होगी। उसमें यह मुख्तसर सा जो आखिरी में मौजू बना मौला ने और फिर मौला की औलाद ने ईमान बचाने के हवाले से एक बात कही। लेकिन जिब्राइल ने कहा कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अपना ईमान बचाएंगे, बाकी तो ईमान को उठा के बाहर फेंक देंगे, जिस तरह से आपके यहां गार्बेज वार्बेज के बिन होते हैं, उसमें आप जाके सारा कूड़ा फेंक के उसको बाहर सड़क के किनारे रख देते। जिब्राइल जब आके देखेंगे इसके अंदर ईमान जैसी कीमती चीज है, वो तो उसको लेके चलेगा। मौला ने अपने मानने वालों को इस खतरे से बहुत ज्यादा आगाह किया, खाली खतरे से आगाह नहीं किया, फिर तरीके बताए, और उनमें से एक तरीका ये कि आज की रात मौला दुनिया से जा रहे, वो जहर जिसका एक कतरा अगर तुम दरिया में डाल दो तो एक मील में जितनी मखलूकात हैं, दरिया की जितने क्रिएचर हैं, वो सब मर जाते, एक कतरा। और मौला के पूरे बदन में वो तलवार की पूरी धार जहर से बुझी। वो जहर 3 दिन से मौला के जिस्म में गर्दिश कर रहा, 3 दिन। अल असर हत्ता इम्कान हमने कोशिश की, हमने से मतलब है अल असर के इंतजामिया, कोरोना डिजीज के जो शरई मसले हैं और जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, इनको ख्याल करते हुए जो हमारी आजादारी के तरीके हैं, और इबादत के वो भी बरकरार रखे गए। अजा खाना खुल सका तो खुला, खुला, लाइटें जली, बाकायदा इमामबाड़े के हॉल के अंदर तकरीरें और मसाइब पढ़े गए। तो उसी हवाले से आज मौलाए मुत्तकियान की शहादत की मजलिस के अख्तिताम पे ताबूत भी अब ये खवातीन के सेक्शन में है। उस अंदाज से ताबूत नहीं है जैसे हमेशा होता था, क्योंकि जैसा मैंने कहा शरई और हुकूमत के कवानीन का ख्याल भी करना, लेकिन जिस जिस आजादारी से मुतालिका जिस जिस इबादत का मौका है उसे हमको नजरअंदाज भी नहीं करना। खवातीन मातम करेंगी, जो तरीका कुम और मशहद की जरी में इख्तियार किया गया कि एक फासले पे रोक देते हैं, बोसा नहीं देने दे रहे, उसी अंदाज से ताबूत सजाया गया है, ताबूत रखा हुआ है खवातीन, अब उसका मातम भी करेंगी। मर्दों में तो बरादर मोहतरम अली सफदर साहब का बयान शुरू के नुहा खानी होगी। तो मेरे ये आखिरी जुमले, कल की मजलिस का भी ऐलान हो गया, मेरी मजलिस के बाद की नुहा खानी का भी ऐलान हो गया, शरई और हुकूमत के कवानीन के दायरे में रहते हुए मौलाए कायनात के शबीह ताबूत के हवाले से भी बयान हो गए। और आखिरी बात, जब बरादर मोहतरम अली सफदर साहब के नुआखानी मुकम्मल हो जाए तो जो लोग शब कदर के अमाल को ज्वाइन करना चाहें, 5 मिनट का एक गैप दिया जाएगा, 5 से 10 मिनट, ताकि इस दौरान वो लोग वुजू कर ले, नमाज की जगह तैयार कर ले और कुरान अपने साथ रखें और उसके बाद फिर अमल शुरू। लेकिन और एक ऐलान अभी मुझसे कहा गया कि कल क्योंकि मजलिस जब खत्म होगी, डे टाइम की मजलिस है, इफ्तार पे जाके खत्म होगी, तो जो मोमिनीन और मोमिनात यहाँ अजा खाने में उस मजलिस में शिरकत के लिए आए हुए होंगे उनके लिए इफ्तारी का भी यहीं पे इंतजाम। आज मौलाए कायनात की इस दुनिया की आखिरी इफ्तारी थी। 3 दिन से जो जहर अली के बदन में गर्दिश कर रहा है, अली के सारे जिस्म को अंदरूनी एतबार से काटता चला जा रहा है, ये मेरा मौला है जो 3 दिन इस जहर को बर्दाश्त कर गए। लेकिन आज 3रे दिन जहर के इतने असरात तो हो चुके थे, 2 जुमले उस अली की जबान पे आ गए जो खैबर के दरवाजे को जिस अंदाज से उखाड़ता है कि बच्चे के लिए खिलौना खेलना ज्यादा मुश्किल है, अली के लिए दर खैबर कोई मसला नहीं। जो अकेला अमर इब्न अब्दुल्लाह जो 1000 के बराबर है, 1 जरबत से उसके 2 टुकड़े कर देता, लेकिन आज 2 जुमले अली की जबान पे आ गए जो बता रहे मेरा मौला 3 दिन से तकलीफ की किस शिद्दत में। पहला जुमला ये कि मौला ने आज मगरिब की नमाज बैठ कर पढ़ी। जिस अली के पांव से तीर खेचो तो उसको पता ना चले कितना कमजोर हो गया होगा वो मेरा मौला। यहां पे अक्सर मैं एक जुमला बात को वाजे करने के लिए कहता हूं। अली की बेटी जैनब जिंदान शाम में नमाज शब बैठ के पढ़े तो सज्जाद को यकीन ना आए, फूफी अम्मा आप और नमाज बैठ के पढ़े, जिन्होंने शाम गरीबा भी नमाज खड़े होके पढ़ी, ये तो अली है। जैनब के बाबा जैनब से ज्यादा ताकत रखने वाले और वो अपनी एक वाजिब नमाज बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्या कैफियत मेरे मौला की होगी। और दूसरा जुमला, मौला ने कहा हसन बेटा, आखिरी मरतबा, बिल्कुल मगरिब के बाद की चीज है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू मजलिस में कहा फजर तक तो अली की तकफीन भी होके दफन करने वाले वापस कूफे आ चुके। बेटा जो आखिरी आखिरी कुछ सहाबी है उनको बुला लो, मैं एक बार आखिरी में उनसे कुछ गुफ्तगु कर लूं, वो आए। कल अगर मौका मिला दिन की मजलिस में तो मैं असबक इब्ने नुबाता की वो हदीस पढ़ूंगा जो आखिरी हदीस मेरे मौला ने अस्हाब से इरशाद फरमाई, फिर अली है और घर वाले। और मौला ने जुमला का सलूनी कबल अन तखपदूनी, मैं मफकूद हो रहा हूं, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मुझसे पूछो, लेकिन देखो आज मुख्तसर सवाल करना, तुम्हारे इमाम के बदन में ताकत नहीं। अल्लाह, ये वो अली कह रहा हूं जो एक सूरह हम की तफसीर ईशा से फजर तक इस तरह करता है कि रात गुजर जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता कि रात गुजर। कितना कमजोर हो गया कि आज अली कह रहा है कि सवाल बेशक करो लेकिन मुख्तसर करो। आज अली के बदन में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया से जाते जाते हमारा ईमान बचाने की इतनी फिक्र है कि जो आखिरी वसीयत नामा हसन और हुसैन को लिखवाया नहजुल बलागा में आज भी मौजूद है, जाके लिस्ट में चेक करके पढ़ लीजिएगा, पूरा हमारा ईमान बचाने का इंतजाम। लेकिन उससे कुछ पहले एक बार फिर वो जुमला हमारे सामने आया जो तीन दिनों में तीसरी मरतबा आ रहा, और वो ये कि जैसे ही इफ्तार का वक्त आता नमाज अली ने पढ़ी, अब इफ्तार का एहतमाम है, उम्मे कुलसूम दूध का प्याला लेके आई। पहले दिन दूध का प्याला लाई थी, अली ने उठवा दिया। कल दूध का प्याला लाई थी, इब्ने मुलजिम को भिजवाया, और वो भी इसलिए इस्तेमाल किया कि कुलसूम ने अपने हक का वास्ता दिया। लेकिन आज जब दूध का प्याला आया, अली ने मना कर कहा, कुलसूम ये दुनिया में मेरी आखिरी गिजा है, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, कम से कम ये दूध को इस्तेमाल करके तो इस दुनिया से नहीं जाऊंगा, कल मैंने तेरी बात मानी थी, आज तू मेरी बात मान। बेटी मजबूर हो गई, दूध का प्याला उठा लिया गया, और कमजोरी के आलम में अली आखिरी गुफ्तगु अपने असाब से करके सारे घर सारे असाब को रुख्सत किया और सारे घर वालों को बुलाया। अली की जितनी बीवियां हैं वो सब उस हुजरे में मौजूद, अली की जितनी बेटियां हैं, अली के जितने बेटे, 12 बेटे हैं, 16 बेटियां हैं, मेरे मौला के सराहाने सब आ चुके। और एक मरतबा मेरे मौला ने सबको देखा और कहा, उम्मत के नाम तो आखिरी वसीयत कर चुका हूं, अब तुम लोगों से आखिरी वसीयत। पहली वसीयत ये कि देखो मेरे बेटो, यूसुफ के 12 भाई थे, तुम भी 12 भाई, मेरे हसन और हुसैन के साथ उस तरह ना करना जैसे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ किया। और फिर इसके बाद मजीद अपने इसी पैगाम को वाजे करने के लिए कहा कि आओ और आकर मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे हसन के हाथ पर बैत करो, हसन का साथ देने और हसन से वफादारी का अहद करो। एक मरतबा हसन ने मुश्तबा को आगे बुलाया, मेरा मौला बिस्तर पे दराज है, आखिरी आखिरी सांसें ले रहा है, हसन मुश्तबा बाप के सराहाने हैं, एक एक करके सारी औलादों को बुला रहे, हसन के हाथ पे हाथ रखा जा रहा, लेकिन जब आने वालों में एक एक आ रहे हैं, अब्बास अलमदार आगे आए, हुसैन एक मरतबा अली कहते हैं, हसन जरा तुम एक तरफ हट जाओ, बेटा हुसैन तुम्हें आगे आना है। हुसैन आगे आते हैं, बाबा क्या हुक्म है, कहा हाथ बढ़ाओ, हुसैन ने हाथ बढ़ाया, अब्बास से कहा, अब्बास अपना हाथ हुसैन के हाथ पे रख के वफादारी का अहद करो। अब्बास तो बाबा का हुक्म मान रहे, लेकिन एक बार हुजरे में किसी बीबी के रोने की आवाज गूंजने लगी, अली इतने जख्मी है, सर पे जरबत लगी है, सर को घुमा नहीं सकते, कहा ज़ैनब बेटी अभी मैं जिंदा हूं, ये मेरी जिंदगी में कौन है जो रोने लगा। ज़ैनब ने तड़प के कहा, बाबा अम्मा उम्मुल बनीन रो रही है, अम्मा उम्मुल बनीन रो रही है। अली ने कहा, उम्मुल बनीन जरा मेरे करीब तो आओ। उम्मुल बनीन करीब आई, अली ने कहा, उम्मुल बनीन क्यों रो रही, अभी मैं जिंदा हूँ। कहा मौला मैं तो इसलिए रो रही हूँ, मेरे बेटे अब्बास की गलती बता दीजिए, मेरे अब्बास की खता क्या है, मेरे अब्बास का कसूर क्या है। अली ने कहा, उम्मुल बनीन ये क्या कह रही हो। कहा आपने हर एक का हाथ आका हसन के हाथ पे रखवाया, अब्बास की बारी आई तो हुसैन के हाथ पे हाथ रखवाया। अरे ऐसा सवाल, अली जैसे साबिर की आंखों में आंसू आ गए। कहा उम्मुल बनीन मैं इसका जवाब अभी नहीं दे सकता, मैं तो नहीं हूंगा, लेकिन तुम होगी जब तुम्हें पता चलेगा। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ पे क्यों रखवाया गया? देखिए अभी से अली को मैदान करबला में अब्बास के कटे हुए बाजुओं का कितना ख्याल। अब्बास हुसैन के हाथ पर हाथ रखकर हुसैन से वफादारी का अहद करवाया, लेकिन लेकिन मैदान करबला से अली ने सिर्फ ये एक चीज याद नहीं दिलाई, एक और चीज भी याद दिलाई, और वो ये कि जब सारी औलादों से वफादारी का अहद ले लिया, तो एक बार आका हसन से कहा, हसन बेटा तुम भी जरा पीछे हट जाओ और हुसैन जरा मेरे करीब आओ। अब हुसैन को अपने करीब बुलाया, हुसैन करीब आए, अली ने कहा हुसैन अपने कान मेरे मुंह के करीब ले आओ। और एक मर्तबा बाप और बेटे में आखिरी आखिरी लम्हे हैं अली की जिंदगी के, मोमिनों तुम्हारा मौला दुनिया से जा रहा है, आखिरी आखिरी लम्हे हुसैन के कान में मेरे मौला ने कुछ कहा और अली दुनिया से चले गए। लेकिन वक्त ऐसा था, वाकयात इतनी तेजी से पेश आए, उस वक्त तो कोई कुछ ना पूछ सका, लेकिन बाद में मुसलसल ज़ैनब पूछती थी, भैया बाबा ने आखिरी वक्त में क्या ऐसी बात कही थी, बाबा ने आखिरी वक्त में क्या वसीयत की थी, बाबा ने तन्हाई में क्या कहा था। और हुसैन कहते थे ज़ैनब मैं नहीं बता सकता हूँ, और ज़ैनब कहती थी भैया मुझे कभी पता ना चलेगा, और हुसैन कहते थे नहीं ज़ैनब तुम्हें पता चलेगा लेकिन अभी नहीं बता सकता हूँ। 20 साल गुजरे, 61 हिजरी करबला आशूर का दिन, हुसैन आखिरी रुख्सत के लिए दरे खेमा पर आए। ये मेरे मौला की आखिरी रुख्सत आपने सुनी, वो हुसैन की आखिरी रुख्सत है। हुसैन आखिरी रुख्सत के लिए दरे खेमा पर आए और एक मर्तबा ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा, भैया जरा अपने गले पर से अमामे का ये कपड़ा जिसे तहतुल हनक कहते हैं हटाना। हुसैन ने तहतुल हनक को हटाया, ज़ैनब ने हुसैन के गले का बोसा लिया। हुसैन ने एक मर्तबा कहा, ज़ैनब इस वक्त ये बोसा लेने का क्या मौका? और ज़ैनब घबरा के कहती है, भैया ये बहन और भाई के दरमियान की कोई बात नहीं है, ये तो 50 साल पहले अम्मा फातिमा ने मदीने में बुला के वसीयत की थी और कहा था, ज़ैनब बेटी जब मेरा लाल आखिरी रुख्सत के लिए आए हुसैन के उस गले का बोसा लेना जिस पर कातिल का खंजर चलेगा, मैंने तो अम्मा की वसीयत पे अमल किया है। इधर बेटी ने माँ की वसीयत पे अमल किया। एक बार हुसैन ने कहा, ज़ैनब बहन अब जरा तुम भी अपने शाने से चादर तो हटाना। ज़ैनब ने चादर हटाई, हुसैन झुके, बहन के बाजुओं का बोसा लिया। ज़ैनब ने घबरा के कहा, भैया ये इस वक्त बाजू चूमने का कौन सा मौका है? कहा, ज़ैनब ये बहन और भाई के दरमियान की बात नहीं है, ये तुम्हारे 20 साल पुराने सवाल का जवाब है ना। तुम पूछती थी बाबा ने आखिरी वक्त में क्या वसीयत की थी, बाबा ने आखिरी वक्त में कहा था, बेटा हुसैन करबला में अली ना होगा, जब तुम आखिरी के लिए जाना तो मेरी ज़ैनब के उन बाजुओं का बोसा लेना जिसमें रस्सियां बांध कर इसी शहर कूफा में ज़ैनब को कैदी बना के लाया जाएगा। वो माँ की वसीयत पे बेटी ने अमल किया, ये बाप की वसीयत पर बेटे ने अमल किया, और ये वसीयत कब की है? 21 रमजान की आज की रात, शहरे कूफा, अली का घर। अल्लाह आपको बार बार ले जाए और उस घर की आप जियारत करें। जैसे ही आखिरी वसीयत हुसैन से कर ली, एक मर्तबा अली ने आंखें बंद की और आंखें खोली और कहा कि अस्सलाम अलैका। हुसैन करीब आए, हसन करीब आए, ज़ैनब करीब आई, बाबा ये किसे सलाम कर रहे? एक मर्तबा अली ने कहा, तुम नहीं देख रहे? अरे देखो मेरे सरहाने, मेरा आका रसूलुल्लाह आया है, ये मेरे चचा हमजा आए हैं, ये मेरे बड़े भाई जाफर तैयार आए हैं, अरे ये खदीजा ताहिरा आई है, ये तेरी माँ फातिमा आई है, और ये सब हमसे कह रहे हैं अली चलने की तैयारी करो, हम तुम्हें लेने आए हैं। रसूलुल्लाह आ गए, फातिमा ज़हरा आ गई, अली ने सबको सलाम किया, अली दुनिया से रुख्सत हुए। ज़ैनब ने एक बार सर को पीटा, अरे मेरा बाबा मारा गया, अरे मैं यतीम हो गई। लेकिन लेकिन जब जनाजा तैयार हुआ, अभी रात का अंधेरा है, अभी रात का वक्त है, रोने की आवाज कूफे में गूंज रही है, कूफे वालों को पता चल चुका है अली की वसीयतों में एक वसीयत ये थी, हसन बेटा मेरा जनाजा जब उठाना तो हसन पीछे से, एक तरफ तुम कंधा दोगे हुसैन, पीछे से एक तरफ तुम कंधा दोगे हसन ने कहा बाबा, और आगे से, तो आगे से जनाजा खुद उठेगा और जहां जाए वो जनाजा तुम भी उसी तरफ जाना। एक मर्तबा उसी तरह से वाकयात पेश आए, जनाजा उठा, अली के घर से बाहर आया, कूफे की गलियों से गुजरा, कूफे की गलियों में लोगों का मजमा है, आगे से ये ताबूत खुद उठा है, पीछे एक तरफ से हसन कंधा दे रहे, एक तरफ से हुसैन कंधा दे रहे। जिस दरख्त के करीब से गुजरा, दरख्त ने झुक के सलाम किया, जिस इमारत के करीब से गुजरा, इमारत ने एहतराम में सिजदा किया, यहां तक के कूफे की सरहद आ गई। और एक मर्तबा हसन हुसैन ने कहा कूफे वालों यहां रुक जाओ, आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है, मेरा बाबा मना करके गया है। और फिर वो 6 या 7 असाब कल दिन की मजलिस में बताऊंगा, जनाजा लेके चले नजफ पहुंचे, जनाजा दफन करके वापिस शहर कूफा में दाखिल हुए और फजर की अजानें हो रही थी। कूफे वाले बेचैनो बेकरार थे, कहा मौला हसन आप मौला का जनाजा दफन करके आ गए, ये तो बताइए जनाजा चल कैसे रहा था, आगे कौन था कंधा देने वाला। कहा एक तरफ से जिब्राइल थे, एक तरफ से मीकाइल थे, जिब्राइल और मीकाइल ने आगे से कंधा दिया। बस मेरे आखिरी जुमले, ऐ जिब्राइल और मीकाइल अली के 12 बेटे हैं, सारा शहर कूफा है, तुम्हें कोई जहमत करने की जरूरत नहीं है, अली के ताबूत को, अली के जनाजे को कंधा देने वाले सब लोग मौजूद है, अगर तुम्हें कंधा देना है तो आओ मैदान करबला में, एक गरीबुल वतन का, एक मुसाफिर का, फातिमा के लाल का नाशा इस तरह पड़ा है कि कोई दफन करने वाला नहीं, जवान